समझ में आए वो आगे आ जाए, आप जिसको नहीं समझ में आए वो पूछे जाए।
कौन श्रेष्ठ है और कौन कुछ कम है, उसे कौन श्रेष्ठ है, उसे कौन श्रेष्ठ है, ये कैसे पता चलेगा? इस दूध में कितना पानी है,
कितना खाला,
ये दूध घटिया है कि अच्छा है कि अच्छे से अच्छा है, ये कैसे पता चले?
अरे जब हम दूध लेने जाते थे उंगली डालते थे दूध में और फिर निकालते थे, जितना ज्यादा चिपकता था तो इसका मतलब है वो गाढ़ा है।
उसमें यदि कुछ पानी मिलाकर उसमें एक पाउडर होता है दूध का ना, वो जरा अधिक मात्रा में दे दे और मिला दे खूब जोश, तो फिर क्या होगा?
फिर मार खा जाएगा,
फिर अंगुली दुबाने से मालूम होगा? तो
नहीं होगा।
कोई ऐसा बैरोमीटर या कोई ऐसा यंत्र हो जिससे हमको अच्छी तरह से पता लगे। मशीन को चलाने वाला भी एक्सपर्ट हो। मैं गया एंजियोग्राफी करने, मैं गया वो क्या होता है जहाँ सब लगा करके देखते
हैं, ईसीजी,
तो कोई अनाड़ी आदमी उस यंत्र से हमको देख लेगा कि नहीं? उस विषय में कोई एक्सपर्ट होगा तो ही देख सकते, जो जितना ही एक्सपर्ट इस विषय में होगा उतना ही बारीकी से हमारे इस चीज को देख सकता है। और नहीं, अनाड़ी आदमी देख करके उस पर अनाड़ी ही विचार करके वो समझ लेगा जैसे इसको क्या है कि नहीं है, नहीं समझेगा। भक्ति राज्य में भी एक बैरोमीटर है, किंतु उसको व्यवहार करने वाला एक्सपर्ट होने चाहिए। वो बैरोमीटर है अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मात् धनाभि अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति। भक्ति राज्य का ये मशीन है, जियोग्राफी कहिए या वो कहिए, किंतु इसको चला करके इसके द्वारा माप लेना ये सभी नहीं माप सके। कौन मापेगा?
एक्सपर्ट है
जो इस विषय में एक्सपर्ट है वही मापेगा जी भक्ति है कि। पहला लक्षण है अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनं भक्ति उत्तम। कृष्ण के लिए रुचिकर और प्रीतिकर तन मन वचन से और भावों से जो चेष्टा है ये भक्ति है। क्या समझा? तन से मन से वचन से और भावों से कृष्ण के लिए रुचिकर और प्रीतिकर दोनों लोग जो चेष्टाएं हैं वो भक्ति है। किंतु साथ ही साथ में कृष्ण के लिए प्रीतिकर और रुचिकर न होकर अपने लिए हो किंतु वही चेष्टाएं तन मन वचन और भावना की, यदि इससे रहित हो, ऐसी कोई इच्छा ही नहीं हो और ज्ञान कर्म के क्रियाओं से अच्छा भी करना रहे तो उत्तम भक्ति हो। सनक सनंदन सनातन जी के ऊपर में इसको ले आइए। कहते हैं नंग धड़ंग, कोई कपड़ा तक नहीं डाल, कोई चीज खाते पीते भी नहीं है, उनकी कोई अपनी संसारिक लालसा है सुख भोग की नहीं है। ज्ञान और कर्म से ढकी हुई उनकी कोई चेष्टा है या नहीं, वो भी नहीं है। भक्ति पहले थी तो वो दूर हो गई है, और कृष्ण के लिए प्रतिकर और रुचिकर क्रियाएं मन से इत्यादि से करते हैं। किंतु अब इनमें सनक सनंदन सनक कुमार ये सब है और नारद जी को ले लीजिए, नारद जी नंगे भी नहीं रहते और उनमें भी ये सब गुण है, किंतु भक्ति का तात्पर्य कैसे दिखेगा? कौन से इष्ट है
नारद जी?
कैसे मालूम होगा?
अनुशीलन के साथ।
कौन से इष्ट है दोनों में?
नारद जी।
कैसे वो तो नंगे है, उनको तो एकदम कोई इच्छा ही नहीं, सब समय 5 वर्ष के बाल कर जैसे रहते हैं, उनमें क्या विशेषता है? यही पर विचार करना है। अच्छा देखो, और दूसरी तरफ में देखो, द्रौपदी जी है, कपड़े पहनती है, 5-5 पति हैं, संसारी कामों में व्यस्त रहती है, 5 पतियों पति की सेवा कर रही है, किंतु भक्ति की दृष्टि से जब नारद जी आएंगे नारद जी को भी प्रणाम करेंगे, किंतु दोनों में श्रेष्ठ का तारतम्य से जब हम विचार करेंगे तब किसको हम ले? नारद जी को ना? क्यों द्रौपदी को क्यों लगे? कभी नारद जी के गले में हाथ रख करके प्यारी सखी प्यार से कृष्ण कभी बोले होंगे नारद जी को? द्रौपदी में क्या विशेषता है? 5 पति हैं, इतने बड़े राज्य का संचालन करती हैं, उनके बहुत से शत्रु भी हैं, दशरथ इत्यादि, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, कड़ी बात बोलती है, सत्य बात बोलती है, इसलिए सभी उसके विपरीत है। नारद जी का कोई शत्रु नहीं, कोई उनकी इच्छा नहीं, नहीं? और जीवन भर बचपन से ही त्यागमय जीवन, तपस्या कितनी कठोर थी और करके सब कुछ बिता रहा है, कोई काम नहीं, आप तो काम है, पूर्ण काम है, किंतु कृष्ण कभी उसके कंधे पर नारद जी के हाथ रख करके प्यारी सखा या प्यारी सखी कहे होंगे? नारद जी के लिए दौड़ करके खाली पैर उनके लिए कभी गए होंगे? कभी द्रौपदी पर जहां कभी भी कोई आपत्ति आई, कृष्ण नंगे पैर वहां दौड़ करके गए, मुझे भूख लगी है, नारद जी से कहेंगे? नारद जी कहेंगे ये तो हमें की भूख नहीं है, तो आपको भूख कहां है, झूठ बात है, कहेंगे ना? इसलिए नारद से द्रौपदी में कोई एक ऐसी भावना है जो कृष्ण के लिए प्रतिकर और रुचिकर जो होती है, ये इस विषय में वो आगे है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम और अन्याभिलाषिता शून्य तो नारद जी में भी है,
दोनों में कॉमन है,
सब लोगों में है, बल्कि जब देखा जाए तो द्रौपदी में नहीं है ये, ऊपर से मालूम होता है जिसकी बहुत सी कम है, हमारे 5 पति ठीक रहे, हमारा राज्य न चला जाए, हमारी इज्जत न चली जाए, ये सब है ना, किंतु वो जो पहला वाला जो है अनुकूल नहीं कृष्ण, उनकी कुछ ऐसी भावना है जो हजार चेष्टा करेंगे नारद जी नहीं होगा, द्रौपदी जी नारद को देख करके उनके चरणों में गिर जाएंगे, उनके चरण की धूली लेंगे, नारद जी कर सकते हैं द्रौपदी का चरण धूली लेंगे? क्यों क्यों नहीं लेंगे? कारण क्या है?
द्रौपदी लेने ही नहीं देंगे।
बोलिए, नहीं समझ रही है तुम, क्यों नहीं लेंगे?
वो ऋषि हैं, ये गृहस्थ हैं, ये एक लौकिक व्यवहार के हिसाब से,
तो कृष्ण भक्ति में तो बाधा है, वो लौकिक व्यवहार, उसको क्या भाई? आप लोग कहते हैं हमको सुनाई नहीं, ज्यादा जोर से बोलिए,
उत्तमा भक्ति
क्या? उत्तमा भक्ति कह रहे हैं, नहीं
वो भावना है उसके अंदर में कहती है, कृष्ण के प्रति अनुराग स्नेह कहता है स्वाभाविक रूप में।
कृष्ण ममता
है,
ममता
अनन्य ममता। अच्छा द्रौपदी में ये सब कुछ है, नारद श्री श्रेष्ठ है ना, किंतु ब्रज की एक कोयल है, ब्रज का एक मोर है, कृष्ण के साथ में ममत्व जीतना है और कृष्ण के स्थान पर नृत्य करेगा, ये करेगी द्रौपदी नृत्य करेगी। देखो इसलिए ब्रज का एक मोर भी कृष्ण के प्रति इतना अनुरक्त है जो दूसरा अनुकुलेन कृष्ण अनुशीलन वो संसार के किसी भी श्रेष्ठ भक्तों में भी नहीं, वो अंतर का भाव, ये अंतर का भाव ही असल में शुद्ध प्रेम है। ये इस पर जिसका विचार चलेगा उन्नत होगा, उसी को हम बैरोमीटर के द्वारा इसके द्वारा वो यंत्र मापेगा, वो उस पर उसकी सोई को केंद्रित करेगा, इस पर भाव वाला जो है ना और किसी चीज पर नहीं जाएगा, अन्याभिलाषिता पर नहीं जाएगा, ज्ञान कर पर नहीं जाएगा, वो जाएगा केवल भाव पर। उसके भाव कृष्ण के प्रति कहते हैं, ब्रज में मोर का कोयल का या और लोगों के जो भाव, या नारद जी से सुखदेव गोस्वामी से तुलना कीजिए, सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जिसको कोई कामना नहीं है, सब प्रकार से उन्नत है, गोपियों की चरण की धूलि की दिशा को क्यों प्रणाम करते हैं, चरण की धूलि नहीं पता, ये हमारे लिए संभव, जिस दशा दिशा में वो है उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूं, क्यों क्या उनमें खूबी है, मोर गोपियां कपड़े पहनती हैं,
श्रृंगार करती हैं,
वो सुखदेव गोस्वामी और इनसे
नारद जी
चतुस्थान
इन लोगों से ये लोग तो कपड़े भी नहीं पहनते, कर्म भी करती हैं, कर्म नहीं करती, चावल कूटती हैं,
पानी लाती हैं,
आटा पीसती हैं, बहुत दूर से घड़े लेकर के पानी लाती हैं,
दूध देती हैं,
ठोठोली भी करती हैं, अब दूसरे भी करते हैं ठोठोली, जानते हैं कृष्ण उनको देख करके बिना ठोठोली किए मान नहीं सकते, गोपी में क्या चीज खूबी है, ये चीज है यदि इस खूबी को किसी ने यदि मार्ग कर लिया है तो उस चीज के लिए लोग होकर के सब उठा सकते, क्या चीज है, गोपियों से बहुत से लोग सुंदर भी हैं, मथुरा की जो गोप ये हैं जादवानियां वो गोपियों से बहुत सुंदर है, घर की है ना, बड़ी गोरी सुंदरी सब कुछ है, किंतु उनका भाव इतना सरस मधुर नहीं होगा, क्या चीज सीखो जो कृष्ण देखते ही रह जाते, क्या चीज, ये जो अनन्य ममता है ये गोपियों का अपना धन है, कृष्ण के प्रति अनन्य जो सुधा जी में अनन्य ममता है किंतु उनसे भी अधिक है, जो सुधा मैया अपना सब कुछ नहीं कर सकती कृष्ण के लिए, नंद बाबा के लिए कुछ करना है, घर को चलाने के लिए काम है, बलदेव जी आएगा उसको भी स्नेह करना है, रोहिणी मैया को भी, गांव वाली को भी, और गोपियों को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, अखंड अनन्य प्रेम कृष्ण ऐसा जो प्रेम है यदि ये उत्तम भक्ति का
नाचता है भगवान के आगे, बहुत तेज तेज नाचता है, और नाचने के बाद वो सिर्फ एक मोर का पंख ही भगवान को अर्पित करके निकल जाता है, और वो पंख भगवान
कहाँ जाता है दिन रात वही जब कृष्ण चले आते उन्हीं की चिंता
करता है,
और उड़ करके वही गांव के बाहर ही रुक जाता है, फिर जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ में फिर जाता,
और फिर भगवान उन्हीं के पंख को
भगवान उसके पंख को धारण
करते हैं। आपकी बुक गोप कुमार
उसमें भी अनन्य ममता है,
अनन्य
तो गोपियों की तुलना में
माइक दे दिए तुमने।
ये प्रेम है, ये प्रेम कृष्ण पर। एक आदमी घर बार छोड़ दिया, क्या कर दिया, स्त्रियों से बात नहीं करता या पुरुषों से बात नहीं करती और ज्ञान कर्म भी नहीं करता है, किंतु तभी जिनके भाव ऊंचे हैं कृष्ण के प्रति अनन्य ममता है, वो क्या चीज है, वो ये देख करके कुछ बोला का विश्लेषण करें। प्रहलाद महाराज जी के जीवन चरित्र में क्या क्या खूबियां हैं? साधारण भक्तों के लिए प्रहलाद महाराज की भक्ति बहुत ही हमारे लिए कामकाज की चीज है। अनुसरण करना चाहिए प्रहलाद महाराज जी की भक्ति। हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी 108 बार प्रहलाद महाराज जी का चरित्र पाठ किया था और सबको परामर्श देते थे कि पाठ करो। क्यों? एक साधक भक्त को प्रहलाद महाराज जी में जो गुण है वो सब गुण चाहिए। प्रहलाद महाराज में क्या गुण है? उनको 26 प्रकार के गुण जो वैष्णव में होते हैं भक्तों में, ये उनमें है। पहला गुण क्या है?
कृपालु।
कृपालु, कृपालु किस लिए? वो कहता है प्रभु से, प्रभु हमको और कोई चीज नहीं चाहिए, हमको यही चीज चाहिए, जगत का सारा दुख हमारे ऊपर में आए और हमारा जितना पुण्य है सब लोगों में बांट करके अपनी भक्ति दी और मैं जन्म जन्मांतर तक इनका दुख भोग करूं। कोई चाहता है जगत में? नहीं चाहेगा, साधारणों के लिए नहीं, थोड़ा भी दुख नहीं, और वो हृदय से चाहते हैं। इसलिए अकृत द्रोह, यदि संसार का आदमी दुराचरण करता है तो उसके लिए वो नहीं करते। यदि किसी के कोई बुराई सब समय करता है तो संग आकर के कुछ न कुछ करेगा, किंतु वो सब समय उसके लिए चाहते हैं कि इसकी अच्छाई, इसका भला, किसी के लिए कभी बुरा नहीं, अपने पिताजी का कभी बुरा ही नहीं सोचा, भगवान से मांगा कि प्रभु इनका उद्धार कर, दया के सागर है, शरणागति उनमें अनन्य रूप से है, जो भक्ति का गुण है, शरणागति है। उसके पिता उसे मार रहे हैं, कभी बचने के लिए कोई चेतना नहीं करते, ये प्रभु है, प्रभु हमारा सब समय पालन पोषण करने वाले हैं। सही शुरू है, कोई भी होता कुछ भी हो तो संतुष्ट रहते हैं अपने आप में, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई संसार की कामना वासना भी नहीं है। इस प्रकार से जो 26 गुण वैष्णव में होने चाहिए उनमें पूर्ण रूप से, उनका जीवन चरित्र यह सब दिखला रहा है। कुमार काल से भजन करो, ये असुर बालकों को भी भजन करके दिखला करके शिक्षा दे करके उनको असुरों को भी अपने तरफ में, जो सब समय मद्यपान करने वाले हैं, बीड़ी सिगरेट करने वाले, पॉलिसी चलने वाले, जैसे सब प्रकार के दुर्गुण हैं, उनको भी सुधार करते थे। तो भी कृष्ण के इतने प्यारे प्यारे क्यों नहीं है, हनुमान जी इनसे श्रेष्ठ हैं क्यों, हनुमान जी इनसे श्रेष्ठ है, क्या जाने समझ क्या करें, रामचंद्र अकेले भगवत्ता में, रामचंद्र जी की भगवत्ता में, राम ही हमारे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूँ और किसी का नहीं सेवक हूँ। यहाँ तक कि कृष्ण का स्वरूप भी देखेंगे तो वो राम की ही भक्ति करेंगे।
ये तो हनुमान में हो गया, प्रहलाद महाराज में,
प्रहलाद राम महाराज में किसी के प्रति इतना अभी एक साथ में संबंध नहीं जुड़ा, और सब चीजें ठीक है, किंतु इनका उनमें ममत्व भाव, ममत्व के ऊपर में सब कुछ रहता है, ममता अतिशयांकित, तब वो राग होगा। इनका भगवान के प्रति साधारण रूप में विश्वास है, शरणागति है, किंतु ममता के वजह से कृष्ण ही, ये राम ही हमारे अपने हैं, वो जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, राम है, किंतु कृष्ण के प्रति उनका नहीं, और किसी भगवत अवतार के प्रति नहीं, सबके प्रति पूज्य बुद्धि है, किंतु उनके प्रति है कि मैं उनका दास हूँ। दास होने में क्या होता है, सेवा करता है। प्रहलाद महाराज जी को ये ज्ञान है कि हमारे प्रभु को कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो सेवा से भी ऊपर है, क्यों, उनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, वो थकते नहीं है, उनको कोई इच्छा नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, वो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर है, तो उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या सेवा करेगा, उनका पैर ही नहीं दुखता तो उनको क्या पैर की जरूरत, उनको भूख नहीं है तो क्या खिलाएगा। ये तो प्रहलाद महाराज जी क्या, नृसिंह जी को भूख नहीं लगती, वो जगत से अतीत है, किंतु इनके जो राम है, राम को भूख लगती है, फल मूल लाते हैं, पैर भी दबाते हैं, राम को नींद भी आती है, नृसिंह जी को नींद भी नहीं आती, ऐश्वर्य का कुछ माधुर्य का कुछ अंतर है।
तो ये बैकुंठीय नारायण में और जो उनके विष्णु के जो भक्त हैं उनमें और प्रहलाद महाराज में,
प्रहलाद महाराज जी का बैकुंठीय प्रेम है कुछ, और राम के प्रति उनका जो प्रेम है कुछ दास्य भक्त,
इसका मतलब बैकुंठ में दास्य भाव से भी कम है, बैकुंठ के जो
ऐश्वर्य में दास्य है, और हनुमान का ऐश्वर्य से कुछ कृष्ण के राम के प्रति कुछ ममता युक्त है। यहाँ पर ममता होना बड़ा कठिन है, ममता नहीं होगी, ममता कब होती है, जैसे यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण पैदा हुए और कृष्ण को सारी आवश्यकता, जब जैसे एक बच्चे को आवश्यकता माँ से होती है, इसलिए यदि बच्चा रोएगा तो मैया दौड़ करके जाएगी। ये सब ममता के लक्षण है। नारायण में ऐसी ममता का कोई लक्षण है? उनमें कोई लक्षण नहीं। इसलिए ममत्व वहां पर होना बड़ा भारी कठिन है। तो हनुमान में प्रहलाद महाराज की अपेक्षा ममता भी है
और
ऐश्वर्य भाव कम है
और सेवा भी है।
वो राम को सेवा की जरूरत है ये हनुमान जी समझते हैं। भाई अब रात हो गई, हमारे प्रभु को सोना है, सोने का स्थान देखना है। प्रहलाद महाराज जी को नृसिंह जी का सोने के लिए देखना है, जब उनके लिए सोने का समय हो गया। वो क्यों? तो फिर ब्रह्मांड उनको नींद फिर नहीं आती। माया ये सोना तो माया का काम है।
तो ये रस कौन सा कहलाएगा? प्रहलाद महाराज का या बैकुंठीय प्रेम में कौन सा रस मानेंगे?
अभी रस एक तरह से आरंभ ही नहीं हुआ, ये शांत का भी
शांत का भी
छोटा, इसीलिए ये कमी
है।
सब कुछ ममता के ऊपर में, प्रेम के ऊपर में आधारित है। अब ये तो परिकर है, परिकर तो माया से मुक्त है। इसलिए अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्म आदि अन्नामर्थम ये लक्षण देखना ही नहीं है। वो कहां तक देखा जाएगा? यदि बद्ध जीव है उनके लिए देखा जाएगा। अरे समझना, वो किन के? हम लोगों के लिए, संसार में रहन करके से साधन भजन जो कर रहे हैं उनके लिए।
इसलिए ये तटस्थ लक्षण हो गए। ये तटस्थ लक्षण के लागे,
इसलिए तटस्थ है। ये जरूरत है तब तक है, इसके बाद में उसकी जरूरत। जहाँ बैकुंठ में पहुंच गया, प्रेम में पहुंच गया, भाव अवस्था में ही पहुंच गया, तो ये दोनों की जरूरत ही नहीं। वो माप दंड नहीं चलेगा
वहां पर, अनुकूल कृष्ण अनु
वहां पर चलेगा। इसलिए वो आंतरिक जो भाव है उस पर विचार करना पड़ेगा इनको, भक्ति समझने के लिए। क्या चीज कमी है प्रहलाद महाराज जी में जो हनुमान उनसे श्रेष्ठ है? उनका ममता भाव नहीं है। हमारे प्रभु खाते पीते हैं, इनको ये जरूरत है, उनमें नहीं है। ये समझते हैं कि राम एक साधारण मनुष्य है। कौन? हनुमान जी हमारे प्रभु हैं, और इनके प्रभु कौन है? बैकुंठेश्वर। इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं। इसलिए ऐश्वर्य की अधिकता से उनकी भक्ति न्यून है। और नर्वत भाव जहां पर है, नर्वत नर्वत बंधु बंधु का भाव,
लौकिक सद्बंधुवत,
लौकिक सद्बंधुवत भाव, लौकिक प्रभु का भाव, लौकिक सखा का भाव, लौकिक
पुत्र
वात्सल्य जैसा भाव, और लौकिक गोपियों जैसा मधुर भाव। लौकिक नहीं, लौकिक सा लगाइए,
लौकिक वत,
लौकिक वत, नर लीलावत भाव। नर लीला हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, किंतु होगा। हनुमान जी लंका पार गए, क्यों क्यों गए?
ममता के कारण।
राम जी का संदेश ले
क्यों गए भाई? क्या
सीता जी की खोज करने के लिए और राम जी का संदेश लेके?
राम जी नहीं जा सकते थे, इसलिए उनकी दृष्टि में था कि राम जी नहीं जा सकते।
नहीं अभी ऐसी बात,
बहुत सी बातें हैं। एक तो पहली बात, राम को पता नहीं है जैसे सीता का, और राम सब समय विरह में दुखी हैं, उनका रोना हनुमान जी को दिखाई नहीं, अच्छा नहीं लगता, सह नहीं सके। आदमी किसी की सहायता करता है तो कब करता है? जब देखता है कि बड़े दुखी हैं, उसका हृदय पसीज जाता है, तब वो उसकी सहायता करता है। हनुमान जी ने देखा कि ऐसे बैठे रहते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं, हासिते हासिते, खाना नहीं, भोजन नहीं, कुछ नहीं, वर्षा हो रही है, और रामचंद्र जी पर्वत की गुफा में बैठे हैं। घर तो है नहीं, वर्षा की फुहारे फुहारा जानते हैं, वो उनके तरफ सोच रहे हैं। विवाह का याद आ रहा है, विवाह सीता जी का, और चीजें याद रहे, सीता जी की प्रत्येक जो चीजें हैं उनके मन में आ रही है, और राम लक्ष्मण हनुमान जी बहुत दूर से देख रहे, दुखी हनुमान जी भी रो रहे हैं उनके दुख के बारे, उसे रहा नहीं, राम तो जा नहीं सकते, अरे पता लगना चाहिए कहां से राम के दुख को दूर करने के लिए ऐसी सहानुभूति उमड़ पड़ी, उसे रहा नहीं। राम में वो शक्ति नहीं जो जा सकते हैं, तभी इनके प्रभु हैं, यही माधुर्य भाव है नर्मद लीला का। हनुमान जी गए, सीता जी से भेंट हुई, सीता जी से बातें हुई, उनको कहा जी हमारे पीठ पर चढ़ करके चल चलो, सीता जी नहीं है, देखो मैं विवश होकर के रावण ने हमको स्पर्श किया, किंतु इसमें मैं स्वतंत्र हूं, जान पूछ करके पर पुरुष तुम हो, यद्यपि हमारी सेवा के लिए आओ, मैं तुमको स्पर्श नहीं कर सकता, तुम्हारे पीठ पर चलना हमारे लिए बहुत दुभा, मैं नहीं। वो समझ हैं, वो आए इसको हरा करके बदला ले करके, और तब फिर वो हमको ले जाएंगे, जाए सब निर्नर लीलावत सब चल रहा है। प्रहलाद महाराज जी ऐसी कोई कल्पना कर सकते हैं सेवा की, कैसी कैसी हनुमान जी राम को लग गया, लक्ष्मण जी को हाय हाय कर रहे हैं, हमारा भाई सहोदर चला गया जो कि हमारे लिए अपने प्राण को कर दिया, राम रोते 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 हनुमान जी से देखा जाएगा, सुसेन बज्जय लंका में उसकी घर समेत ही उखाड़ लाए, उसको पता ही नहीं चला, और उसको जगा करके पूछा भाई ये कैसे बच सकते हैं, देखा जी मैं कहां पर हूँ, अपने घर में हूँ ना, कहा देखा अरे ये तो मैं राम की छावनी में हूँ। तब उनका डर गया, तब उन्होंने बतलाया जैसे ऐसी सी बात है, ये कोई जाए और हिमालय के शिखर से कहीं से संजीवनी बूटी ले आए, अब तब इसको मैं ठीक कर दूंगा। रात ही रात में गए विघ्न बाधा हुई, ये सब विघ्न को पार करके और वहां से ले आए, सुंघाया गया तो वो ठीक हो गए। ये सेवा का सुजोग प्रहलाद महाराज जी के जीवन में है, ममता है, ममता का अवकाश नहीं है, क्यों नृसिंह जी को कोई विपत्ति ही नहीं आएगी, उनका नाम लेने से ही सब दुख सब दूर हो जाएंगे, इसलिए उनको जरूरत नहीं है, आसक्ति होने के लिए तो कुछ चाहिए ना, मसाला तो चाहिए, आसक्ति होने का कोई कारण नहीं, इसलिए प्रहलाद महाराज की अपेक्षा हनुमान जी में ये सब भाव है कि हनुमान भी पांचों पांडव अर्जुन इत्यादि और द्रौपदी के यहाँ विवश हो जाते हैं, उनकी कोई नहीं चलती, वो टुकुर टुकुर ऐसे देखते रहते हैं कि हाँ इतना इनके बसीभूत है पांडवों के, अर्जुन कैसे सका, अर्जुन जैसा भाव इनमें है, यद्यपि वहां पर भी ऐश्वर्य कुछ भाव है, किंतु जिस प्रकार से राम कृष्ण अर्जुन को भीम को गलबहिया देकर गलबहिया और पलंग पर बैठते हैं और सखा सखा कहते हैं कि उनके घोड़ों को धोते हैं, उनकी नौकरी बजाते हैं, उनके लिए यज्ञ कराते हैं, उनके लिए लड़ने जाते हैं, और विशेष करके जब घर पर बैठते हैं दोनों गलबहिया लगाकर, और यदि द्रौपदी आ जाए प्यारी से थी जैसा संबोधन करते हैं, हनुमान का मन बहुत छोटा हो जाता है, किस लिए हमको तो इतना प्यार ही नहीं मिला, मिला उनका मन छोटा होगा कि नहीं, ललचते हैं कि नहीं, ये जैसे अर्जुन को गलबहिया दे करके प्यारे सखा मित्र बंधु अपनी बहन की शादी कर देते हैं, और वो भी कैसे रंग के साथ में, रंग क्या इनको सिखलाते हैं तू सन्यासी बन करके आना, ऐसे विवाह नहीं करने देगा हमारा बड़ा भैया, बड़ा भाई चंद है बलदेव, वो उसकी दुर्योधन से शादी करना चाहता है, तुम एक बात करो सन्यासी बन करके आ जाना, ऐसा सन्यासी भाव बनाना कि द्वारका का कोई समझ न सके। तो वैसे ही उन्होंने मस्तक मुंडन करा दिए, ये सब सफा कर दिया, बड़े झूठ जैसे लगने लगे, हाथ में त्रिदंड धारण कर दिया और हमारा जैसा एक सुमरनी भी ले ली, हरे कृष्ण करते द्वारका में पधारे। आज ऐसा सन्यासी देख करके सभी लोग छिटक गए, ये ऐसा सन्यासी तो सूर्य के समान तक तेज चमकने वाला देखा नहीं। लोग उनके पास में गए, पेड़ के नीचे बैठे थे, महाराज जी पधारिए, कहे मैं नगर में नहीं जाता, मैं नगर से बाहर रहता, खाने के लिए हमको भूख सुख नहीं रहती, हम तो यही बस भगवत स्मरण करते हैं, हम संसार से कोई मतलब नहीं, और किसी वट वृक्ष के नीचे सरोवर के पास में बस अपना स्थान गाड़ लिया, मैं तो बैठ कर सारी द्वारकापुरी की महिलाएं पुरुष लोग सभी लोग वहां पर आने लगे, सभी आकर्षित हो गए, यहाँ तक कि बलदेव प्रभु भी सोचा जी द्वारकापुरी में एक बहुत तेजस्वी सन्यासी आया है, जरा उसका दर्शन तो कर, जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम बलदेव जी ने किया, वो किसी को प्रणाम नहीं करते,
जाने नहीं
प्रणाम किया, कहा जी महाराज पधारिये हमारे राजभवन में, खबरदार ऐसा मत खाए, राजभवन में मैं नहीं चलता, बहुत आदर सत्कार सब किया। बलदेव जी नहीं समझ सके, केवल एक आदमी समझता है, बस वही समझता है,
वो जो डायरेक्टर है ना,
मैं उन्हें जो मैंने प्रभाव की समझ नहीं दिया।
कुछ दिनों के बाद में सभी लोग आ रहे हैं, द्रौपदी ये सुभद्रा भी आए, उसकी शादी होने वाली है, तो वो आकर के इनसे प्रार्थना करती है, कुछ बार मांगती है आप हमारी मनोकामना पूर्ण हो ये दे। अच्छा मनोकामना क्या है? दुर्योधन के साथ में हमारी शादी न हो, पार्थ के साथ न हो, किंतु पहचान नहीं रही, अब ये महात्मा जी के साथ में ये प्रार्थना मेरी मन में कर रही कि हमारी शादी हो तो कृष्ण के सखा जी और मेरी सखा, किंतु कहा नहीं रहता जी हमारी मनोकामना पूर्ण है, अच्छा एवं मत तो हमारी मनोकामना पूर्ण, देखा जी इतना तेजस्वी सन्यासी, किंतु उसने लक्ष्य किया है कि न जाने क्यों हमारे प्रति इसकी ममता हो रही है, स्नेह सन्यासी को नहीं चाहिए, बड़े प्यार से मीठी मीठी बात करता है, ये भी मीठी मीठी, तो उसमें समय कितने चले जाते हैं, ये किसी ने लक्ष्य नहीं किया। और कुछ दिनों के बाद में कार्य उनसे वो मिली तो उन्होंने कहा जी मैं तो वही अर्जुन हूँ, तो हमारे साथ में चल, रस मंगाया और उसको बैठे उसी बेस में बैठ गए और उनको भी बैठा दिया, वो ही बैठ गई, कहा तुम रस चलाओ, ये जदवंशी लोग हैं आक्रमण करते हैं बड़ा भारी मशीन, तुम घोड़ों को चलाओ और मैं इस पर बैठता हूँ, मैं युद्ध करता हूँ, उनको देखता हूँ, बस लेकर के सरपट भगी और इतने में ये धनुष मान लेकर के तैयार हुए, या तो देखा जी हमारा इतना अपमान, ये अर्जुन इतना यहाँ पर इस तरह से बैठा हुआ है, इस प्रकार से किया किसी को पता नहीं लगा, बलदेव जी तो हल मुसल लेकर के चले, आज बदमाश को मैं दंड दूंगा, हमारी मनोकामना थी ये दुर्योधन के साथ में कर, और ये आकर के भेष बदल करके ऐसा इतना साहस, चतरंगड़ी सेना लेकर के उसके पीछे चले, बस कृष्ण इतने मेरे सामने आए, कहाँ जा रहे हैं भैया जी, कहाँ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं हमारे सामने ये जातों का इतना अपमान घोर, तो भाई बात तो ठीक करते हैं, किंतु दुर्योधन की उषा लड़की थी, उसके हरण में आपने सांब के लिए उनको दंड देने क्यों दिए, यदि यह ठीक है सांब वाला ठीक है तो ये भी ठीक हो सकता है, आप विचार क्यों नहीं करते,
रुक्मिणी का तो किसने हरण करके लाए थे,
रुक्मिणी का आपने जो हरण करवाया तो उससे ये बदतर है कि अच्छा है, ये तो ये देखने लगे कृष्ण की तरफ, ये इसमें तुम्हारी सम्मति है क्या,
अरुणी ने तो हरण नहीं किया, सुबह से तो चार रस चला के ले जा रही है तुम्हारी बहन,
ओ तुम्हारी सम्मति, अच्छा तो जाओ, अच्छा भाई तो तुम क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हम के साथ में जैसे आपने कहा ये सुबह लड़की के साथ साथ में यौतुक इत्यादि लेकर के आकर के सांब की शादी तो वैसे ही कीजिए, उसको भी बुला लीजिए और उपहार के साथ में दान दक्षिणा के साथ में इसकी शादी हो और शादी करा करके वर कन्या को आप विदा कीजिए। ये हनुमान कल्पना को भी कर सकते हैं ऐसी सेवा की। इसलिए इस विषय में वो देखना चाहिए कृष्ण के प्रति अनुराग कितना है, ममत्व कितना है, अर्जुन का जितना ममत्व है उससे भी द्रौपदी का ममत्व अधिक है, उससे भी ये श्रेष्ठ। और आगे बढ़ेंगे तो आएगा चतवंशियों के उद्धव का, और उद्धव जी भी यहाँ पर आर पार था नहीं पाते। गोपियों का प्रेम स्नेह कैसा है, ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मान करके कहते कि तू हमारे यहाँ से चले जाओ, कभी फिर मत आना हमारे पास। किस लिए? कृष्ण के अनुराग के। इतना ये द्रौपदी में संभव नहीं है, रुक्मणी सप्तभामा में भी संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी इस प्रेम को देने के लिए लो
आगामी का आवाज के भागे बारे
जनबल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जनबल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी राधा विनोद बिहारी राधा रास बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोद जीवन ब्रज जनरंजन यशोद जीवन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
गरीब बात है उसमें कृष्ण नहीं चाह सकते, इसलिए कृष्ण के प्रति अपना जो भाव है जो कोई अखंड देगा उसके प्रति खुश हो जाए, अन्यथा नहीं। इधर भी प्रेम उधर भी प्रेम उधर भी प्रेम उधर भी एक जात तो ये भक्ति भी नहीं होगी, कृष्ण उसको साथ भी नहीं सकते, उसको छोड़ देंगे जाओ अभी संसार इसका तुम्हारे। गोपियों का विवाह हुआ है किंतु उनका अखंड प्रेम किधर है, सखाओं का भी शादी हुई है उसे संसार से कोई मतलब नहीं। सुभद्र है जानते हैं कौन है सुभद्र जी, कृष्ण के बड़े भैया हैं, वो उनके कृष्ण के नंद बाबा के बड़े भैया के बेटे हैं, इसलिए इनके बड़े भैया लगते हैं। उनकी पत्नी का नाम कुंदलता जी है, उनकी भी शादी हुई है। किंतु सुभद्रा सब समय कृष्ण की सेवा में रहते और कुंदलता भी
सुभद्रा की पत्नी
श्रीमती राधिका जी के कृष्ण के मिलन में सहायक होते हैं। अखंड प्रेम इन पर है और कहीं बटा हुआ अपने पति पे या कहीं पर भी बटा हुआ। ऐसा यदि किसी को प्रेम हो कृष्ण के प्रति अनुराग, कर्तव्य के लिए संसार कर रहे हैं किंतु अखंड प्रेम जो उनके हृदय का प्रेम हो वो कृष्ण पर है, नहीं तो वो भाग बंटवारा कृष्ण नहीं कर रहे। साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है तो वो क्या करे। यदि आप चाहते हैं कि हमारी पत्नी किसी से प्रेम न करे और वो आपकी पत्नी चाहती है कि हमारे अतिरिक्त और किसी से बातचीत न करें, तो कृष्ण के लिए ऐसा स्वाभाविक है, ये नर्वत है ना। इस तरह से कृष्ण के तरफ में धीरे 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 अखंड भाव देना पड़ेगा, तब जाकर के ये भक्ति हो। धन्य जी भी पहुंच गए, बाकी तो कहानी के रूप में मैंने कहा, इसको समझो विचार करो और ऐसे ही अखंड कृष्ण में प्रेम आए और लोगों के प्रति अपना कर्तव्य, कृष्ण के प्रति अनन्य ममता के साथ में प्रेम। बहुत कठिन चीज है, तभी साधक तो ऐसा सोचेगा ही करेगा। बस आज यही तक
जोर प्रेमानंदे
साढ़े आठ सौ बजी
हाँ साढ़े आठ
जिसमें थोड़ी भक्ति है कर्म ज्यादा वो कर्म प्रधान भक्ति हो गई और वो ढह सकती है।
उसी को कर्म कहते हैं जिसमें भक्ति भी थोड़ी हो और कर्म हो और भक्ति के द्वारा हमारा कर्म की